बैन किया था वो थे जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान, और स्पीकर अयाज सादिक ने इनको सस्पेंड किया था क्योंकि उन्होंने कहा जी कि जब प्रेसिडेंट जरदारी की स्पीच चल रही थी तो आपने बहुत ज्यादा राउडी बिहेवियर जो है वो शो किया है। इसकी जो रिकंसिलिएशन की बात है और इनको वापस पार्लियामेंट में बुलाने की बात है वो कर रहे थे जो है ये लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर साहब। उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि हम इनकी जो सस्पेंशन है ये दोनों पीटीआई के लॉ मेकर्स की, इसको खत्म किया जाए और इनको वापस बुलाया जाए। तो पता यही चल रहा था कि जैसे अब इनके बीच में शायद दोस्ती चल रही है, लेकिन फिर पीटीआई के एमएनए जो हैं फ्रॉम कड़क शायद खटक, उन्होंने जनाब बड़ा ही धुआंधार एक स्पीच की और उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारी दोस्ती है सिर्फ इसलिए है कि यानी कि ये जो गुडविल है हम भी दिखा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि स्टैंडिंग कमिटीज जो है उनकी फॉर्मेशन आने वाली है, वरना अदरवाइज जो है हमारा इनके रास्ते जो है वो अलग हैं। ठीक है मजद भाई
जी,
कभी रास्ते एक नहीं हो सकते, ये रेल की दो पटरियां हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है जी। और जनाब बहुत बड़े इल्जाम लगाए कांग्रेस के ऊपर यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो वो इस मुल्क में शरिया लॉ लेकर आएगी। तो इसके ऊपर हिंदुस्तान में बड़ी आज आंखें खुली क्योंकि इन्होंने ये बात, आपको पता ही है कि मोदी जी की एक दिन की जो पहले की बात थी उस पर इन्होंने आगे बढ़ावा देते हुए की। मोदी जी ने भी कल ही कहा था कि जी कांग्रेस जो है उसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो लोगों के पैसे खासतौर पर औरतों के जेवर लेके लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। और क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है उसमें लिखा हुआ है कि जी हम इस तरह करेंगे, और इसी तरह जो है पर्सनल लॉज की बात करते हैं, पर्सनल लॉज को मिस इंटरप्रेट करते हुए इन्होंने आज कहा जी कि शरिया लॉ है इसका मतलब, पर्सनल लॉ को आप इतना आसान मत लें। तो आप खुद सोचें कि जिस मुल्क के अंदर ये इस तरह के झूठे ये मैनिफेस्टो ले आएंगे, ये योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा कि इस तरह के लेकर आएंगे और अगर ये गवर्नमेंट बनाएंगे तो ये लाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिसका के कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों ने लिखा है और जहां पे डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म होना चाहिए वहां पे शरीयत आए, तो आप क्या कहते हैं, आप कांग्रेस को वोट देंगे या नहीं देंगे? अब ये तो भाई आप कन्फ्यूज कर रहे हैं लोगों को, है जी कैसी बातें आप कर रहे हो। तो ये जो है इसके ऊपर फिर जाहिर है कि बड़े लोग भड़के। ऑपोजिशन अलायंस इंडिया जो ऑपोजिशन अलायंस है जो एक्रोनिम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो ये जो इंडिया अलायंस है इसके मुताबिक जो इलेक्टोरल लैंडस्केप है इंडिया का वो बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है, वो फेयर नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी और टीएमसी के लीडर्स और बाकी तमाम जो डजन जो रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने कि अब अलायंस बनाई हुई है जिसमें कि मेजर जो है कांग्रेस है, इसलिए क्योंकि बीजेपी को हटाया जाए और इसको नेक्स्ट टर्म में यानी कि अब ये जो इलेक्शंस हुए उसमें ना जीतने दिया जाए, उससे पहले ये इन्होंने बनाई थी, तो उसके अंदर कुछ जो है बहुत सारी खलबली है, यानी कि लोग बहुत सारे यूनाइटेड नहीं है, खुश नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर भी जो ये अलायंस है इंडिया अलायंस, इन्होंने कॉन्स्टेंटली अलेज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को यूज कर रही है, अपने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस यूज कर रही है और हमको हार्ड टाइम दे रही है। मोदी जी जो है ये सारे इनको क्लेम्स को डिसमिस करते हैं और वो कहते हैं जी ये एक्सक्यूजेस हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आपने जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है वो देखा ही होगा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को झारखंड में जो है पकड़ा गया और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए, जो कि उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल बेसलेस हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तकरीबन 100 पॉलिटिशियंस जो हैं उनको फेडरल एजेंसीज ने पकड़ा है, इन्वेस्टिगेट किया है, उसमें से 95% जो थे वो अपोजिशन के ये सारे लीडर्स थे। और फिर वही हुआ जो पाकिस्तान में हुआ, लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और पीटीआई छोड़ा, मुझे लग रहा है बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट अब हिंदुस्तान भी कर रहा है उसको। तो इधर भी यही हुआ कि ये जो पॉलिटिशियंस बेचारे पकड़े गए इन्होंने भी बहुत सारे कोई तकरीबन 25 के करीब पकड़े गए थे, उसमें से जो 23 थे उन्होंने आके बिल्कुल इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें की यानी छोटी मोटी और कहा जी कि हम ये कांग्रेस को और बाकी अपोजिशन की पार्टीज को छोड़ रहे हैं और हम बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं सारे केसेस उनके ऊपर से जो थे वो हट गए थे। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है फरवरी के अंदर कांग्रेस ने जो है, अभी हमने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले कि कांग्रेस ने कहा जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो भी इन्होंने सीज कर लिए और हम कोई भी पैसा जो है वो स्पेंड नहीं कर सकते हैं। दिसंबर के अंदर तकरीबन 140 फेडरल ऑपोजिशन जो लॉ मेकर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था पार्लियामेंट के अंदर से, क्योंकि कहा गया था कि जी आपकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच यहां पे आया है। लास्ट समर जो राहुल गांधी जी हैं उनको भी क्रिमिनल डेफेमेशन केस के अंदर जो है उनको निकाल दिया गया था, 3 महीने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था एज लॉ मेकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोदी नाम के जो लोग होते हैं वो थीफ्स होते हैं ज्यादातर। इसके अलावा जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि हमारे ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा सख्तियां की जाती हैं, और हिंदुस्तान जो कि क्लेम करता है दुनिया की वन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे, वो नहीं है। इसके ऊपर बात करते हुए राहुल गांधी जी ने भी कहा कि अगर आज कोई कहता है कि हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है तो ये बिल्कुल एक झूठ है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं जी कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं ये जो हैं बिला वजह की ये रेंट ये कर रहे हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस और ये और वो, क्योंकि इनको पता है, ये डरते हैं बीजेपी से कि ये फिर से हार जाएंगे। अमनेस्टी इंटरनेशनल ने हालांकि इसके ऊपर कहा है कि ये इंडिया अलायंस का कुछ कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है, इसके अंदर क्रेडिबल जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है इंडिया अलायंस का जो है वो ये है कि ना तो राहुल गांधी जी, ना तो ममता बनर्जी, ना तो कोई और कोई भी ऐसा करिज्मेटिक लीडर नहीं है जो कि बीजेपी को हरा सके। इसके साथ साथ इनको और भी बड़ा अलायंस को झटका मिला कि जब जेडीयू और राष्ट्रीय लोक दल जो है उन्होंने इनको छोड़ के अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी जो हमारी दीदी है वेस्ट बंगाल में, उसने भी कहा जी कि टीएमसी बिल्कुल आप लोगों के साथ इंडिया अलायंस के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेगा, आप लोग अपने खुद के कैंडिडेट्स खड़े करो। इसमें अगेन डर पड़ गया है कि इसमें वोट्स जो हैं वो डिवाइड होंगे, हाँ जी स्प्लिट हो जाएंगे। और जनाब कांग्रेस जो है इसके अलावा उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत की है कि ये जो बीजेपी है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में और हमारे बारे में झूठ फैला रहा है। जैसे कि हमने आपको भी बताया कि बीजेपी के लीडर्स जो हैं योगी आदित्यनाथ टाइप के, वो कह रहे हैं जी कि तुम शरिया लॉ लाओगे, इससे पहले जो मोदी जी ने कहा जी कि ये तुम्हारे सारे पैसे और एसेट्स ले लेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, खासतौर पर मुसलमानों को दे देगा, तो आप ना करो। तो उन्होंने जी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि मोदी जी और बीजेपी हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो इनको आप रोको। पहले तो बिल्कुल पाकिस्तान वाली स्टोरी चल रही है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्या कर रहे हो आप, पाकिस्तान का सारा पैटर्न कट पेस्ट कर रहे हो आप, मत करो ऐसे, ठीक है जी। और जनाब शाहरुख खान साहब डॉन के रूप में नजर आ सकते हैं, और अगर आप समझ रहे हैं कि ये फरहान अख्तर की डॉन 3 है, नहीं ये डॉन 3 नहीं है, ये अपनी बेटी के साथ एक फिल्म में आ रहे हैं जिसमें ये डॉन के रूप में नजर आएंगे। इनकी बेटी जो है सुहाना खान, उसके साथ सुजॉय घोष जो है एक अपनी फिल्म बना रहे हैं जिसका के नाम है किंग, उसमें ये अपनी बेटी के साथ बिग स्क्रीन जो है वो शेयर करेंगे। इसमें इनके बड़े शेड्स ऑफ ग्रे होंगे और ये जाहिर है कि एक डॉन की तरह इसके अंदर जो है वो करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे और इनका रोल होगा। इसको बना रहे हैं सिद्धार्थ आनंद और सोर्सेज के मुताबिक दिस मूवी इज गोइंग टू बी वेरी कूल, फुल ऑफ एटीट्यूड एंड स्वैग, ठीक है जी। हाँ जी, तो हूं उसी वजह के नाल बेटी जड़ी है वो भी वड्डी स्टार बनेगी। भाई ये क्या मजाक है, शाहरुख खान साहब हमको भी कोई चांस दो यार, बेशक अपनी अम्मा का ही चांस दो, आपकी अम्मा बन जाएंगे यार, कोई चांस दो दो, ये क्या मजाक है, भी शाहरुख खान के साथ आएंगे ना अभी, हमें भी चार लोग दुनिया में देख लेंगे, शायद वो जो इटालियन जिसकी मैंने तस्वीर अपने कमरे में लगाई है शायद वो इम्प्रेस हो जाए माजद भाई, है ना। तो शाहरुख खान साहब क्या कर रहे हो, बेटी को इतना आप वो बढ़ावा दे रहे हो, हमको भी थोड़ा सा कुछ भाव दो यार। अच्छा जी, अच्छा जनाब आमिर खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी अब नई रेंडिशंस जो आई हैं उनका, जो बड़ा एक आइकॉनिक सॉन्ग था क्यामत से क्यामत तक, जो 1988 में फिल्म आई थी पापा कहते हैं, उसकी नई अब रेंडिशंस जो है वो आ रही है। और आपको पता ही है कि इन्होंने अपनी इस फिल्म से डेब्यू किया था। ये जो फिल्म है सॉरी ये जो गाना है इसका इन्होंने टाइटल दिया है पापा कहते हैं 2.0, और ये जो ट्रैक है ये आएगा नजर आपको श्रीकांत फिल्म जो आ रही है उसके अंदर, जिसके के अंदर काम कर रहे हैं राजकुमार राव। इस मौके के ऊपर सिंगर उदित नारायण भी थे, और ये वो पहली फिल्म थी ना सिर्फ आमिर खान के लिए बल्कि ये पहली फिल्म थी जूही चावला के लिए भी, म्यूजिक कंपोजर्स आनंद मिलन के लिए भी, सिंगर्स उदित नारायण और अलका याग्निक के लिए भी, डायरेक्टर और इनके जो कजन थे मंसूर खान के लिए भी, और बहुत सारे नए जो है क्रूज के अंदर। तो ये सब ने पहली बार क्यामत से क्यामत तक में काम किया था। तो आमिर खान साहब कहते हैं जी कि मैं बिल्कुल श्योर नहीं था इस फिल्म के बारे में, मुझे पता नहीं थी ये कैसे चलेगी, और जब मैंने बाद में देखा अपने कजन मंसूर के साथ बैठ के तो मुझे इस फिल्म में बेतहाशा फ्लॉज नजर आए, क्योंकि आपको पता ही है कि आमिर खान साहब को जो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, तो वो कहते हैं जी मुझे बहुत सारी गलतियां नजर आई, लेकिन फिर ये फिल्म जो है एक माइलस्टोन बनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, और 1988 के बाद तो इसने सारा जो है वो सीन ही फिल्म इंडस्ट्री का चेंज कर दिया और मेजर शिफ्ट आया। इस मौके पे इसको प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को इनके अंकल जो है आमिर खान साहब के नासिर हुसैन, उन्होंने। इस मौके पे उदित नारायण साहब भी थे और उन्होंने कहा जी कि 36 इयर्स बैक जब मुझे इन्होंने आमिर के साथ इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने कहा था कि आपको ये गाना आमिर के लिए गाना है, तो मैं बड़ा डर गया था और मैं घर चला गया था और मैंने कहा जी कि मैं तो इस गाने के ऊपर काम नहीं करूंगा। फिर मुझे बहुत कन्विंस किया गया तो मैं फिर वापस आया। तो आमिर ने उस मौके पे इनके साथ जोक किया उदित नारायण के साथ, उन्होंने कहा जी हाँ आपको लग रहा होगा मुझे देख के कि ये असल में एक्टर वैक्टर है भी कि नहीं कि ऐसे ही जो है ये मजाक है। ठीक है जी। एंड जनाब टुडे इज मनोज बाजपाईज बर्थडे, ही टर्न्स 55 और आज जो है उन्होंने बड़े रेवलेशंस किए हैं मनोज बाजपाई साहब ने। उन्होंने कहा जी संजय लीला भंसाली की फिल्म जो आई थी देवदास, उसके लिए उन्होंने मुझे भी रोल ऑफर किया था मगर मैंने डिक्लाइन किया। वो डिक्लाइन क्यों किया उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने मुझे कहा कि वो जो सपोर्टिंग एक्टर है चुन्नी लाल का वो तुम करो, और उसके लिए इन्होंने सैफ अली खान को भी बात की, मुझे भी की, गोविंदा को भी की, उनके पास शायद डेट्स नहीं थी लेकिन मैंने तो साफ ना कह दिया क्योंकि देवदास का जो रोल है वो बड़ा आइकॉनिक रोल है। तो मैंने संजय लीला भंसाली से कहा कि मैं सपोर्टिंग रोल चुन्नी लाल वाला नहीं करूंगा, मैं देवदास का रोल करूंगा क्योंकि वो मुझे बड़ा इम्प्रेस करता है एंड आई वुड लव टू प्ले दैट रोल, लेकिन वो तो ये शाहरुख खान साहब को दे रहे थे तो अब फिर इनको कैसे दे देते। तो वो कहते हैं फिर इसलिए मैंने ना कर दिया। फाइनली फिर आपको पता है कि चुन्नी लाल का कैरेक्टर जो था वो जैकी श्रॉफ साहब ने फिर किया था, तो कहते हैं जी इसलिए मैंने वो ना किया। और इसकी एक और भी वजह थी कि उस वक्त जितनी फिल्में मेरी आ रही थी उन सब में मैं हीरो आ रहा था, तो मैंने कहा अब तुम मुझे सपोर्टिंग रोल दे दोगे तो मेरी तो मैं ऑलरेडी जो है 8 फिल्मों में काम करता हूं तो बिल्कुल ही मैं नीचे बॉटम पर आ जाऊंगा तो मैं नहीं कर रहा तेरे साथ काम ऐसे। और जनाब यूके के अंदर जो इंग्लैंड के स्टेडियम्स हैं उन्होंने बहुत सारे स्टेडियम्स ने आज बड़ा जो है वो इंटरेस्ट शो किया है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के जो टेस्ट मैचेस हैं वो करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेलीग्राफ ये जो न्यूज़पेपर है, लॉर्ड्स द ओवल और बैक्सटन के जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उन्होंने कहा है जी कि हम ये इनकी करा सकते हैं। इसके अलावा सरी और वॉरविक शायर जो हैं उन्होंने भी कहा है कि वी आर रेडी टू होस्ट इंडिया पाकिस्तान टेस्ट। उसकी वजह यह है कि हमने कुछ थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि इंडियन स्किपर जो है रोहित शर्मा साहब एक इंटरव्यू थोड़े दिन पहले दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान की टीम औसम है लेकिन हमने हमेशा उनके साथ T20 या ODIs खेले हैं, मैं उनके साथ अब एक टेस्ट खेलना चाहता हूं लेकिन एक न्यूट्रल कंट्री के अंदर। आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान के ज्यादातर मैचेस जो है न्यूट्रल बैकग्राउंड न्यूट्रल प्ले ग्राउंड पे दुबई में होते हैं लेकिन इस दफा इंग्लैंड बड़ा जो है वो शो कर रहा है इंटरेस्ट। वो कहता है
हाउसफुल,
हाँ हाउसफुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल दुबई में आप देखें जैम पैक्ड होते हैं उनके, इतने इतने बड़े स्टेडियम है, इतने ह्यूज किस्म के सारे जैम पैक्ड होते हैं। तो वो ये कहते हैं जी करिए इस दफा इंग्लैंड में आप ये करो। और जनाब थर्ड T20 में जो रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान हारा है तो कल तो रमीज राजा साहब ने बड़ी बैशिंग की लेकिन आज जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है अजहर अली उन्होंने आज बड़ा सपोर्ट किया बाबर आजम को। उन्होंने कहा बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस एज बैट्समैन कंसिस्टेंट रही है वो बड़ी जबरदस्त है, उसको जो है कैप्टनसी से हटाना भी आइडियल नहीं था और अब उसको कैप्टन बना दिया वो भी आइडियल नहीं है लेकिन टू मेनी चेंजेस क्रिकेट के अंदर अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन उसका अपना खुद का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा ब्रिलियंट है और जो है वो बहुत सारे कैप्टन ऐसे गुजरे हैं कि जिनके वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो आप सिर्फ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख के उसको जज मत करें, अदरवाइज उसकी बहुत अच्छी कैप्टनसी भी है और उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी है। और उन्होंने टीम को भी अर्ज किया कि भाई आप बाबर आजम को सपोर्ट करें अहेड ऑफ जो भी इस साल जो समर में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप जून में, तो उसमें उन्होंने कहा जी ये करें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उसने कहा जी कि जो 30th एडिशन ऑफ सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में हो रहा है उसके लिए हमारा 20 प्लेयर स्क्वाड जो है वो खेलने के लिए जाएगा। फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं की जो प्रेसिडेंट हैं शहला रजा, उन्होंने कहा जी कि ये जो हमने सिलेक्ट किए हैं लोग सिलेक्शन कमेटी की सजेशन के ऊपर किए हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला कैप्टन रहेंगे, मुर्तजा याकूब वाइस कैप्टन। पाकिस्तान की टीम मलेशिया के लिए रवाना होगी May 2 को और ट्रेन करेगी वहां पे May 2 और 3 को, और मलेशिया जो है उसने 2022 में ये टाइटल जीता था और अब वो उसको डिफेंड करना चाहेगी। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है अजलान शाह का इसके अंदर 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, न्यूजीलैंड और हमारा कनेडा भी जा रहा है जी इस दफा इसमें, और जापान पाकिस्तान साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया और मलेशिया हैं। ओपनर मैच जो है पाकिस्तान का मलेशिया के अगेंस्ट है May 4 को, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट May 5, जापान May 7, कनाडा May 8 और न्यूजीलैंड May 10। पाकिस्तान जो है वो 3 दफा इस कप को जीत चुके हैं 1999, 2000 और 2003 में, और 2011 में ये जीते हुए थे, लेकिन फिर उनको रनर्स अप मिली क्योंकि जब मैच जो है वो हाफ टाइम के सॉरी फुल टाइम के बाद हुआ तो उसमें फिर देन दे लॉस 3-2 ऑस्ट्रेलिया से। तो फिर जनाब ऐसे हुआ, ठीक है जी। और जनाब आयरलैंड भी आजकल क्रिकेट में बड़ा आगे आगे चल रहा है और उन्होंने भी कहा है कि हम एक व्हाइट बॉल सीरीज जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो करेंगे, अबू धाबी में ये सीरीज होगी। और वो कहते हैं जी कि इसके बाद हम जो है मेंस टेस्ट मैच जो है जुलाई के अंदर होस्ट करेंगे। और
उनकी बहुत अच्छी टीम है, आप उसको
हाँ बिल्कुल आयरलैंड को आपने मजाक नहीं लेना,
आयरलैंड इज अ वेरी गुड टीम।
जी जी बिल्कुल, इनको जो फुल मेंबरशिप मिली थी वो 2017 में मिली थी और इन्होंने जो है फर्स्ट टेस्ट जो था वो मलाहाइट के अंदर नियर डबलिन जो है वो किया था 2018 में और फिर इन्होंने मैचेस काफी जीते भी थे अफगानिस्तान के खिलाफ, खासतौर पर अबू धाबी में अर्लियर दिस ईयर अभी इन्होंने जीता है, लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर होम स्टेडियम नहीं है इसलिए ये बाहर करते हैं। इससे पहले इन्होंने जो है अपने दो T20s जो है ब्रिस्टल में इंग्लैंड में मूव किए थे 2022 में, तो इसलिए ये इधर उधर मूव करते हैं क्योंकि बड़ी हैरदी वाले आयरलैंड के बीच कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान से भी चंगा हो या ना इन्हें कोलम माजिद पर कितने स्टेडियम है, कितने स्टेडियम है
देख लो,
देख लें आप, पाकिस्तान की कोई कदर ही नहीं करता,
क्रिकेट है ना,
क्रिकेट है। अच्छा जी, एंड जनाब एब्सोल्यूटली लास्ट न्यूज वो माजिद भाई को खुश करने के लिए ये मैंने किया, हालांकि इस न्यूज का मेरी न्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई गल नहीं माजिद भाई ने भी कोई खुश कर दिया। ऑस्टन मैथ्यूज जो है उन्होंने जी स्कोर किया विनर इन थर्ड पीरियड और दो असिस्ट उन्होंने किए, मेपल लीव्स ने फिर जो है जीता बॉस्टन ब्रूम से 3-2 से और ये जो अब इन्होंने सीरीज है 1-1 से लेवल की है और ये जी बड़ी इन्होंने कल खुशियां मनाई है, बड़े खुश हुए हैं और ये कहते हैं जी कि इनका जो ये गोल था ये इनका फर्स्ट गोल था प्ले ऑफ का इन द लास्ट 7 कंटेस्ट।
That is Austin Matthews की आप टॉक,
हाँ Austin Matthews, yes.
Austin Matthews की सो सीरीज जो है बेस्ट ऑफ 7 की है एंड इज टाइड एट 1-1,
यस
कल दूसरा तीसरा मैच होगा एंड कल
अगर बारिश होगी तो वॉश हो
जाएगा, नहीं नहीं बारिश हो ये
अच्छा कुछ भी नहीं है, नहीं, कोई फर्क नहीं है,
कोई फर्क नहीं,
इंडोर है,
इंडोर है जी। तो अब ये है कि अगर कल मैं जो प्रेडिक्शन की थी कि टोरंटो इन 6, आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस, नॉट ओनली दैट,
क्या क्या कहना चाह रहे हैं इन 6 का मतलब 6 हारेंगे,
नॉट अब आपको जो कुछ कहना कह लें आप जो कहना कह लें आप, नॉट ओनली दैट टोरंटो ब्लू जेस
नीले जे
लास्ट नाइट बीट कैंसर सिटी
हाय
ओहो 5-3,
यस
तो ब्लू जेस खेले वो जीत गए, लीव्स खेले वो जीत गए, अब आप जो कहना चाहें कह सकती हैं।
अच्छा ठीक है, चलो फिर कार चलिए।
ये थी आज की रिपोर्ट एंड सब 8 बजे तक इंशाल्लाह ताला हमारा आपका साथ होगा यहां पर, डोंट गो अवे, हम कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे। शाजी जी
थैंक यू मजे भाई, हमें तो भी बैठे हैं आपके साथ ही तो फिर आपको मुझे मजे का गाना सुनाना पड़ेगा, अच्छे गाने।
अच्छा अभी 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 आपका गाना निकालता हूँ मैं,
हाँ
और अगर आपने पत्थर फेंकने हो तो उस साइड ही फेंकिएगा,
और ये गाना मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ मजे भाई, सॉन्ग हाँ बिल्कुल ठीक है।
अभी इनकी फरमाइश का गीत मैं लगाता हूँ, इन द मीन टाइम कुछ देर हो गई, माजरत चाहता हूँ, टॉप ऑफ द आवर कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहने दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर 6478724900।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ईद मेला 27 अप्रैल चंगूसी पार्क ब्रैम्पटन में,
ढेरों फ्री फन एक्टिविटीज आपकी मुंतजर है। हलाल फूड ट्रक्स, डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, गिव अवेज और बहुत कुछ। मकामी तंजीमों की मदद के लिए अपने साथ कोई भी खिलौना या खराब न होने वाला फूड आइटम लाइए और कम्युनिटी को वापस देने के जज्बे को तस्कीन दीजिए। मजीद मालूमात के लिए brampton.ca/e।
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजा कॉस्मेटिक्स फिर से लेके आ रहे हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स और बिग सेल खास आपके लिए।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
80% तक की सेविंग्स ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स।
बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम।
ध्यान रहे, सेल तो सिर्फ अप्रैल 20th से मई 12th तक ही है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। विजिट lizascosmetics.com।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिखण गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा, जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल नु रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने की निम्रता सहित बेनती की जाती है।
ਇਹ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दा दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
जी सामेर नासिर, वेलकम बैक अगेन।
मैं भाई, आपकी इतनी अच्छी किस्मत है, कल आपको गाना आयशा जी ने किया था, आपको डेडिकेट आज मैं।
एक बात बताएं कि जी सामे निगरम, इसमें हंसने की क्या बात है?
इसमें हंसने की बात ये है कि मैं भाई को बहुत हंसी आती है।
हंसी तो
हंसी तो आनी चाहिए,
हम तो बिल्कुल, पता क्या,
हंसते हुए आए हैं।
हम हंसपुक लोग हैं।
हाँ, हंसते हुए आए हैं दुनिया में,
और हम हंसपुक लोग।
कोई चीज नहीं, फेक नहीं होनी चाहिए।
नाउ ओनली द पर्सन हु इज लाफिंग and himself knows whether it's fake or not. Nobody can find out.
Absolutely not.
Absolutely not. Absolutely not.
और चलो मैं भाई गोली मारो, जो चढ़ रहे हैं उन्होंने सुन दे।
आपको फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई, आपको ना बिल्कुल एक्टर होना चाहिए।
नौटंकी में, नौटंकी में
कल बच्चा, मुझे याद आया ना कि उसकी थर्मोस गिरी हुई थी और कुल्फियां साइड पे थी, रोई जा रहा था, रोई जा रहा, गोरा पाजी पाकिस्तान गया हुआ था। उसने पूछा इज एवरीथिंग ओके, कहता कि एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, उसने टक्कर मारी और मेरी सारी कुल्फियां गिर गई, मेरे पास इतने ही पैसे थे, सारा मेरा नुकसान हो गया। उसने फर्स्ट बोनी थी, उसको बड़ा तरस आया, उसने जेब में से 500 रुपया निकाला, उस बच्चे को दिया और बड़ा बड़ा उस पर प्यार आया। सारी शाम भी उसने उसी गम में गुजारी। 5-6 दिन के बाद वो वहां से फिर गुजर रहा था, वही बच्चा उसी जगह के ऊपर सड़क पे बैठा हुआ और ऊंची ऊंची रो रहा था, थर्मोस साइड पे टूटी फड़ी थी और कुल्फियां गिरी हुई थी। ये अब मेरे जैसे को तो पहचानना मुश्किल है, सारे एक जैसी स्किन के, ये गोरापा जी था। वो बच्चे ने फौरन पहचान लिया, तो वो वही कहानी सुना रहा था जो उसने तीन दिन पहले. अब वो कहता है मुझे देख के तो वो बच्चा तो थर्मोस तो टूटी पड़ी थी, ऐसा भागा कि जैसे गधे के सर से सींग भागते हैं. आज तक मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ कि वो बच्चा मुझे मिल जाए. कुड बी द बेस्ट एक्टर इन हॉलीवुड.
अच्छा वही जो गोरा है ना, जो नाशुकरा गोरा है जिसने हमारे मुल्क में जाके इतनी नाशुक्रियां दिखाई हैं और बड़ा जी एक्सपोज करना चाह रहा है उस बच्चे को. देखो माजिद भाई क्या हुआ, जब वो पाकिस्तान पहुंचा ना वो एक जी वहां पे वो नंगी तरह आपको पता है ना जो पड़ी होती है, उसके ऊपर गलती से जी उसका आ गया पैर आया तो उसको तो जी लग गया करंट लगा तो यू कर रहा है मैं मर गया कह रहा है ओ गॉड प्लीज सेव मी इतने में पाकिस्तान में हो गई लोड शेडिंग. कहता है याहू पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि उसकी जान बची.
जान भी बची.
तो ये जो नाशुकरे गोरे हैं ना, इनको हम बता रहे हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीजें हैं.
नाशुकरे गोरों की बात करते हैं तो जितने लोग कनाडा में आते हैं तो आपको
नहीं, कनाडा नहीं होता, कनाडा होता है.
चलो जी, सबसे मुश्किल काम क्या है
कनाडा में?
हाँ, एंटर होने वालों के लिए, नए आने वालों के लिए
क्या है?
1, 2, 3.
अच्छा,
गाड़ी का लाइसेंस लेना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना. अच्छा, मुजफ्फर अली बड़ा उनको फखर था. कल परसों आप प्रोग्राम कर रही थी ना कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस नहीं होती. मुजफ्फर के पास इंटरनेशनल लाइसेंस था. मुझे याद है हमने सऊदी अरेबिया में भी, हम सऊदी अरेबिया रहे नहीं थे, हम सिर्फ 6-7 महीने के लिए गए थे. तो वी हैड कार, हमने वो दमाम से लेके देहरान से लेके मदीना पाक तक. उन्हें बड़ा फखर था मुझे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ड्राइव आती हैं और वगैरह वगैरह. जनाब इम्तहान देने के लिए गए, पहला इम्तहान दिया तो वो ओवर द शोल्डर नहीं देख रहे थे. ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक था. ही फेल्ड. सो ही वेंट बैक उसी मोराल के साथ, दोबारा गए. अब वो सारा कुछ तो उनको याद था. द ओनली थिंग ही फॉरगॉट इज टू लुक ओवर द शोल्डर. पाकिस्तान में तो रिवाज ही नहीं ओवर द शोल्डर देखने का. तो ही गॉट फेल्ड अगेन. तीसरी दफा फिर फेल हो गए. तो वो जब तीसरी दफा इम्तहान देने के लिए गए ना, तो कहने लगे कि इन गोरों को एक दफा पाकिस्तान जाके गाड़ी चलानी पड़ जाए,
लाहौर या कराची में, इनको
गाड़ी चलानी पड़ जाए ना,
चल पता जाए.
ये यहाँ तो गाड़ी चलानी
कोई मुश्किल ही नहीं है,
कोई मुश्किल काम नहीं, अपनी लेन में चलते चले
बूथी उठा के.
एग्जैक्टली,
ये तो ये है कि जो एक लेफ्ट से आ रही है, एक राइट से आ रही है, एक आगे से आ रही है, पीछे से आ रही है,
राइट
घोड़ा गाड़ी,
रिक्शा और पता नहीं क्या क्या, उसमें से बच बचा के निकलना. असल तो आर्ट ये
आर्ट है. तो कहा वो कहते हैं ये गोरे को चाहिए कि ये हमारे ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, इन सारे इंस्ट्रक्टर को एक बार पाकिस्तान भेजो, फिर मैं देखूं ये गाड़ी चला सकते.
सही है, मैं ऋषि सुनक साहब को कहना चाहती हूँ, आप ऋषि सुनक साहब जितने आपके मुल्क में गोरे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि आपके गोरे जो हैं वो आपके मुल्क में ठीक तरह से नहीं रह रहे, आप बेशक उनको इलीगल इमिग्रेंट समझ के जरा थोड़े दिन के लिए ना पाकिस्तान भेजो. उनको पता चले पाकिस्तान में कैसी लाइफ है, आपके मुल्क में आके बिल्कुल लीगली आराम से चुप करके मुंह पे उंगली रख के रहेंगे.
जो पाकिस्तान से आते ना, जो ड्राइव करते हुए आए हैं, तो वो तो राइट हैंड ड्राइव करते हैं वो. इधर आते हैं वो तो आके वो बड़े कॉन्फिडेंट है ना, और वो कहते हैं कि
ये तो मसला कोई नहीं,
राइट हैंड. आप जैसे मुजफ्फर अली तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों चलाते थे ना.
नहीं, वहाँ पाकिस्तान में तो राइट हैंड है, यहाँ लेफ्ट हैंड है. तो जब 10-15 दिन के अंदर ही अंदर उनको जल्दी होती है कि मुझे बस
लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस.
तो जाके अप्लाई कर दिया लाइसेंस को जी, लाइसेंस अप्लाई किया उन्होंने और टेस्ट देने चले गए. मगर दिमाग में उनके वही राइट हैंड ड्राइव था, वो
बिल्ट इन एरर.
ये मैं आपको ये नहीं, कोई
आपके साथ हुआ था?
नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं. मगर एक
मैं तो जम्मा ही गोरा
एक,
था.
एक, एक, एक,
नहीं, उन्हें तो इस क्लास से ली होंगी ना.
एक साहब से अभी भी जिंदा है वो, ये टोरंटो की बात है. वो जी वो इंस्ट्रक्टर बराबर बैठा हुआ है ये, और उसमें उससे निकले बड़ी कॉन्फिडेंटली लेके राइट हैंड साइड पे चले गए. सामने से गाड़ी आ रही थी,
चीखे जाए.
जब गाड़ी करीब आ रही थी कहता है पुल ओवर किया. कहने का यू आर फेल्ड, और वहां से लेके वो पैदल वापस आया.
अच्छा, हम लोगों ने तो
गारंटी आपके साथ हुआ.
नो,
अच्छा मैंने और ताहिर ने तो, क्योंकि हमने मिडिल ईस्ट में चलाई हुई थी ना गाड़ी, वहां पे भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो हम तो अल्लाह का शुक्र है पहली बार
में. लेफ्ट हैंड ड्राइव की बात नहीं है बहुत. अच्छा, फिर मुजफ्फर जब तीस दफा पास हुए तो कैसे पास हुए? उन्होंने ना उसका गाना गाना शुरू कर दिया रूटीन में भी ना, مسرت نذیر صاحبہ کا ایک گانا ہے انج انج کر دی میں کڈی چنگی لگ دی اور آپ کو اچھا مظفر علی نے نا وہ گانا عام روٹین میں بھی جب ہم گھر میں تھے چلانا تو انہیں کہنا انج انج کر دی میں کڈی چنگی لگ دی تو کہتے اب میں چلاؤں گا نا تو مجھے بھولے گا نہیں کہ میں نے انج دس از واٹ
ورک کانفیڈینس بندے میں کانفیڈینس
انج کر دی میں کڈی چنگی لگ دی بس اسی کے اوپر
کل آپ نے ایک آپ نے گانا ڈیڈیکیٹ کیا تھا نا آج ایک گانا ماجد بھائی میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ اور آپ دیکھیں بڑا ہی پیارا یہ سلو بھائی کا گانا ہے اب آپ اپنے آپ کو سلو بھائی سمجھ کے آپ نے یہ گانا سننا ہے کیونکہ یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا جا رہے ہیں جی ایک گرم چائے کی پیالی
اللہ کرے
نہیں ماجد بھائی آپ نے لرکس دیکھیں کتنی اچھی شاعری ہے شاعری آپ مسجد ہمیشہ شاعری پہ اعتراض ہوتا ہے آپ شاعری دیکھو کتنی سندر شاعری ہے ایک گرم چائے کی پیالی
کی بات پہ اعتبار نہ کرنا
یہ سامنے میں نکالا بھائی یہ گانا مگر یہ کہ میں نے کبھی یہ فلم تو دیکھنے کی بات ہی گانا بھی نہیں سنا میں
ہاں ہاں بھائی بھائی آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی چلو چھوڑو ان باتوں کو بالی ووڈ میں آپ کی پی ایچ ڈی نہیں ہے میری ہے اچھا جی تو آپ ایک گرم چائے کی پیالی ہو اس کو پلانے والی ہو چاہے گوری ہو چاہے کالی ہو سینے سے لگانے والی ہو تو بن جائے ہر دن ہے جی یہ دیکھیں ذرا کتنا پیارا آپ کو گانا جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے چلو کرو
گرم چائے کی پیالی ہو کوئی اس کو پلانے والی ہو چاہے گوری ہو یا کالی ہو سینے سے لگانے والی ہو مل جائے تو مٹ جائے ہر غم
لے کے مجھ کو باہوں میں لو یو ڈارلنگ بولے
ज्यादा निराली हो तो मेरी घरवाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, जीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिल जाए हर हम। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर हम।
कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी है। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000 विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। केटरिंग स्पेशल, 8 आइटम्स फॉर जस्ट 9.99, मिनिमम 30 पीपल्स। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
जी साहब, एक बार से खुशी आमदीद कहना चाहती हूँ। आप भी अपना तजुर्बा जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त, काबिले एहतराम, मतलब मैं अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करूँ, हैव ऑल माय रिस्पेक्ट फॉर अजीज शेख साहब, माशाल्लाह इज अ वेरी स्ट्रांग एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हैं। जो लोग नियाग्रा फॉल से वाकिफ हैं, आपको पता ही है कि नियाग्रा फॉल में बहुत से मोटेल्स और होटल्स हैं। इनका कैडलिक के नाम से एक होटल हुआ करता था, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो और उनकी बेगम साहिबा दोनों ने बहुत तरक्की की और इसी तरह कामयाब रहे। अजीज शेख साहब मेरे साथ हैं और वो भी अपनी जिंदगी का, देखिए साहब, कोई बड़ा आदमी है या कोई छोटा आदमी है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई वाक्य। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो का भी एक वाक्य बड़ा सर्कुलेट किया था, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो एक दफा वो अपनी कॉन्फ्रेंस में थे तो जनाब बच्चा उनका उनके डेस्क के नीचे घुसा हुआ था। तो ये छोटी छोटी जिंदगी में, दिस इज व्हाट द लाइफ, सब कुछ साथ चलता रहता है। अजीज शेख साहब मेरे साथ हैं और वो आप तमाम को एक टिप देना चाहते हैं ड्राइविंग से मुतालिक। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम, आपने तो बहुत ऊंचा मुझे आसमान पे ले गए।
नहीं आई मीन इट शेख साहब, आई मीन इट, आई डेफिनेटली
मीन
इट। आई नो यू, जब आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे तब से, और कैडलेक
तब हम भी बहुत छोटे थे,
अभी भी आप यंग हैं, यू आर यंग माशाल्लाह। अच्छा,
बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मैं आपकी ये सुन रहा था अभी ना प्रोग्राम के, राइट हैंड ड्राइविंग और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, उसके लिए मैंने अपने एक टिप है हमारे पास इस तरह की कि जहां पे भी आप चला रहे हो आपने ये देखना है कि आपकी जो ड्राइविंग सीट है ना वो मिडल ऑफ द रोड होनी चाहिए और पैसेंजर सीट फुटपाथ की तरफ होनी चाहिए, चाहे आप लेफ्ट हैंड जगह पे हैं या राइट हैंड जगह पे हैं।
अच्छा,
आपने दिमाग में ये सोच लेना है कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं आप मिडल ऑफ द रोड है और जो आपका पैसेंजर है वो फुटपाथ की तरफ है।
अब मुझे यहाँ से मैं ना मेरा तो नेस्टी दिमाग है, अब मुझे ख्याल आया कि एक जमाना था कि हमने ना इशारे निशान रखा होता था, वो जहाँ पे बोर्ड लगाया ना उसकी राइट तरफ मुड़ना तो मेरा घर आ जाएगा। ठीक, अब जिस दिन वो बोर्ड ही उतर गया तो मैं किधर को मुड़ूंगी? अगर फर्ज करें कि अगर मेरे दोनों तरफ फुटपाथ हो तो मैं क्या करूंगी?
नहीं तो फिर सिंगल रोड होगी ना, वन वे।
सही, बिल्कुल,
वो तो वन वे होगी। और फिर दूसरा टिप जो उसके अंदर याद रखने वाली बात है ना, एक तो ये याद रखना आपने, और आपका इंडिकेटर हमेशा लेफ्ट पे होगा डोर की तरफ।
अच्छा,
जो इंडिकेटर स्विच है ना वो आपके लेफ्ट हैंड पे होगा, मतलब डोर की तरफ होगा, जो भी गाड़ी होगी उसके डोर की तरफ होगा,
ड्राइवर के डोर की तरफ होगा,
ड्राइवर के डोर की तरफ होगा।
अच्छा,
ये दोनों चीजें याद रखें, आप दुनिया में जहां मर्जी गाड़ी चलाएं।
अच्छा, देखो जी मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि इंडिकेटर वाकई राइट साइड पे होता है, मगर यही वजह है कि शेख साहब माशाल्लाह 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 चश्मे बद्दूर आप जिंदगी में भी कामयाब हैं कि आपने अपनी टिप्स रखी हुई हैं। पर मेरे जैसे नलायक को वो कहते हैं ना कि बंदर को माचिस कितनी काम की चीज है, मगर बंदर को माचिस दे दो तो वो शहर को भी आग लगा के आ सकता है, तो मेरे जैसा तो नलायक बंदा तो, मगर बहुत
नहीं, आपने भी जब से हम आपको सुन रहे हैं ना
जी,
माशाल्लाह मेरे ख्याल में कम्युनिटी से सबसे बेस्ट आपने काम किया है,
दुनिया में
बहुत बड़ी बात जो है, बहुत बड़ी जो बात है ना वो हमारे मुजफ्फर भाई को आज तक जिंदा रखा हुआ
है। हाय हाय, मैं तो कहां, मैं तो हर बात में आ जाते हैं, आजकल तो वो मेरी इस बात में बहुत आते हैं, लेमिया आप तो खुद तो जाके सो गए, मैनू भजा के चले गए। वो था ना एक कर्नल साहब थे बंदा एक,
लेकिन आपने उसको जिंदा रखा हुआ आज तक।
आई लव यू शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है जब मुजफ्फर थे तो
इस तरह मुजफ्फर भाई को भी आपने जिंदा रखा हुआ है।
जाने नहीं देना, मैंने जाने नहीं देना, वो एक दुआ है जाने वालों के लिए ना, मस्जिद में एक पर्चा दिया गया तो उस पर्चे में था कि अल्लाह तबारक व तआला जाने वाले की मंजिलों को आसान करें, कब्र में को कुशीदा बागों की तरह रखें और ठंडे पानी का उसको शावर देना वगैरह वगैरह, और उसमें आखिर में जाके एक दुआ है कि अल्लाह ताला उसको एक अच्छी बीवी नसीब करना। मैं क्या भी मैं नहीं ये दुआ पढ़नी, मैं सारी दुआ पढ़ लूंगी, ए नहीं पढ़नी। मिलना मैंने ही है उसको। आई लव यू शेख साहब, बहुत शुक्रिया फॉर यू,
बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच
शेख साहब। की सारी बातचीत से ना मुझे याद आया, मुझे आजकल मुजफ्फर मुझे क्यों याद आते हैं, आजकल इसलिए याद आते हैं कि जब मैं फंस जाती हूँ फिर मैं बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ आप चले गए मुझे फंसा के चले गए, चंगा फंसा के गए हो। अच्छा, फिर दो घड़ी रो पिट के थे फिर ठीक हो गए, पंडा पटोरिया कितना पार, एक मुट्ठी चुकला दूजी तैयार। वो थे ना एक साहब थे, एक बच्चा कुएं में गिर गया, तो बच्चा कुएं में गिरा तो सारे अब करें कि हाय अल्लाह कुएं में गिर गया, इसको निकालना कैसे है, निकालना कैसे है, निकालना कैसे है। ऑल ऑफ सडन जनाब एक साहब थे, उन्होंने छलांग लगा दी कुएं के बीच में, खैर सारों ने डोल छोड़ डाल के बच्चे को बाहर निकाल लिया। जब वो कर्नल साहब बच्चा लेके बाहर निकले तो सारों ने कहा शाबाश शाबाश शाब, आप हीरो हैं, मतलब आपने जान की परवाह नहीं की, आपने छलांग लगा दी और आप बच्चे को बचा के ले आए। कहते हैं पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया,
धक्का किसने दिया है,
मैंने धक्का किसने दिया जी।
वो उसी जगह पे ना,
हाँ,
कर्नल साहब से पहले एक और शख्स था।
अच्छा,
वो नीचे गिर गया।
अच्छा,
बच्चे को सब समझे यार बड़ा जवान आदमी है कि बच्चे को लेने के लिए, बड़ा डीप कुआं था, घूमे चले गए, उनके हाथ और पांव टूट गए जी।
अच्छा,
अब वो ना हाथ इस्तेमाल कर सकते ना पांव इस्तेमाल कर सकते।
हाँ।
अब लोगों ने कहा जल्दी से करो कुछ ना कुछ करो, तो बड़ी सी एक रस्सी लेके आया कोई। रस्सी ला के वो ऊपर से तीन चार लोगों ने रस्सी पकड़ी और उसको ढील दे दे के ये सांप के करीब तक ले गए बावड़ी में, और बड़े दैट यू कॉल इट,
दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गए।
ओके, अब जब वहां पहुंचा अब इनके तो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे, ये तो हाथ पांव टूट चुके हैं।
हाय अल्लाह,
तो वो कहने के ऊपर से आवाज आई कि आप परवाह ना करें, आप मुंह से रस्सी पकड़ लें, हम आपको ले आएंगे ऊपर। मैंने कहा अच्छा,
उसके बाद दांत टूट गए?
नहीं, वो ऊपर उसको खींचते रहे, स्लोली 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 उसको ऊपर खींचते रहे, स्लोली 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 ऊपर खींचते रहे। जब खींचते रहे, जब ऑलमोस्ट ऊपर तक पहुंचे ना, तो किसी साहब ने पूछा उनसे, कर्नल साहब सही है? कहने लगे हाँ।
धड़ाम से नीचे। ये हमने एक कहानी भी पढ़ी थी, लालच बुरी बुला है, वो थी फॉक्स एंड मीट लोफ। तो वो एक लालची सी लोमड़ी थी, आपने भी याद होगी, वो लोग इंडिया से हैं शायद, उन्होंने ये कहानी ना पढ़ी होगी, मगर पाकिस्तान में हमने तो ऐसी कहानियां ही पढ़ी हुई है। तो वो उसको एक गोश्त का टुकड़ा मिल गया, और वो गोश्त का टुकड़ा लेके तो भागी जाए फॉक्स, भागी जाए भागी जाए। आगे आ गया एक दरिया या नहर या एक स्ट्रीम आ गई। तो जब जनाब वो स्ट्रीम आई, अच्छा बेचारा ना एक और भी पीछे कवा भी पीछे लगा हुआ था, वो कहता था देख इसको इतना बड़ा कवा, कवा उड़ता जा रहा था, फॉक्स वैसे जा रही थी। तो उसको बड़ा हुआ कि भाई देख इसको तो इतना बड़ा मीट लोफ मिल गया, तो लंच मिल गया मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं, बेचारा तरसाई नजरों से उसके पीछे जा रहा था। तो जब फॉक्स जब स्ट्रीम आई ना, तो फॉक्स को अपना शेड नजर आया, शेडो नजर आया।
हाँ जी।
और उसने कहा एक और लोग, उसने दूसरी फॉक्स के ऊपर चपटा मारा, उससे भी गोश्त छीनने के लिए, तो अपना भी गवा बैठा।
वो भी गया।
ये कहानी होती थी अगर आपको याद है कि नहीं, आई डोंट नो।
लालची बुरी बला है,
लालच बुरी बला है। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक चीज जो
मैं आपको बताता हूँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है ना, उसने आज बड़े एहतियात से उसने फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि साहब आप अपना जो प्रपोज्ड चेंजेस इन कैपिटल गेन है, आप उस पर रिकंसिडर करें।
आपको पता है कि इसलिए किया है क्योंकि इनको कंसर्न, दे आर वेरी कंसर्न, क्योंकि गेन टैक्स इतना ज्यादा है, आ गई ब्रेन ड्रेन है यहाँ पे एंड मोस्ट ऑफ, और कहते हैं डॉक्टर्स का ज्यादातर
स्पेशली, उसकी रीजन बताया ना, उसकी रीजन ये है कि और दूसरी जगहों पे अगर गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो आपके पास सेविंग्स होती है और आपके पास जो है पेंशन्स होती हैं। डॉक्टर्स क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन हैं वो लोग, तो उनके पास तो कोई नहीं है, तो वो
अपने तकिए में रखते जाए ना पैसे।
तो वो क्या करते हैं कि उनकी एक कॉरपोरेशन का इन्वेस्टमेंट ग्रुप होता है, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो, और जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर सब मिलके, कितने डॉक्टर्स मिलके पैसा बनाते हैं। पहले था कि वन हाफ जो है ना, आप गेन टैक्स जो है उस वन हाफ पे लगता था, अब इन्होंने थ्री क्वार्टर कर दिया उसको। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई दिस इज एब्सोल्युटली वेरी अनफेयर,
और वो जो है हिस्ट्री ऑफ वीलैंड जो है ना, इसको बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, मगर वो जिसे कहते हैं ना कि बस के बीच में जब बैठते हैं, कनाडा में तो खैर ऐसी बसें नहीं, अक्सर वेली खाली बसें जा रही होती हैं, ऐसे लोग टका के बैठे होते हैं। पाकिस्तान की मैं मिनी बस की और बस का जिक्र करती हूँ, तो इतने मुसाफिर होते हैं, इतने मुसाफिर होते हैं, इतने मुसाफिर, ट्रेनों की भी अगर आप बात कर लें, इतनी ट्रेन में मुसाफिर होते हैं कि बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। और जब मुसाफिर भरने के बाद, और जाहिर है बस वाले को भी लालच होता है कि जितने मुसाफिर बैठ सकते हैं, पेट्रोल तो उतना ही खर्च करना है, तो जब वो बस चलती है ना, तो जब धक्के पड़ते हैं ना चार पांच दफा ऐसे आगे पीछे, तो वो सारे के सारे मुसाफिर सीधे हो जाते हैं। जब चलती है बस, तो उस वक्त आप यकीन कीजिए तल धरने की जगह नहीं होती, फिर जब धक्के पड़ते हैं तो हर आदमी अच्छी तरह एक दूसरे में फिक्स हो जाता है, तो जो दीवार दरवाजे से बाहर लोग निकले होते हैं वो भी अंदर फंस जाते हैं। तो कनेडियन गवर्नमेंट ये फील करती है, कल मैं इनका एक बयान देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा है कि यू नो टैक्स तो हमें लगाना पड़ेगा, लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे।
इससे होगा क्या, जो ये कैनेडियन डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने वार्न किया है कि हमारे पास जो कोविड 19 की वजह से वैसे ही बड़ी शॉर्टेज है
डॉक्टर्स की
नर्सेस की और पूरे इन लोगों की।
आपके प्रीमियर जो हमारे डग फोर्ड है, ही इज टेकिंग स्टैंड फॉर दोज पीपल।
एग्जैक्टली, एंड वो कह रहे हैं रिटेंशन एंड रिक्रूटमेंट जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कौन बाहर से आएगा कि भाई आके यहाँ पर मैं जिंदगी भर काम करूँ, मेरे पास कोई सेविंग्स ही नहीं है। और रिटेंशन भी अगेन। एक और चीज बताऊ आपको मैं,
ये आपने कभी नहीं सुना होगा।
मैंने भी जो आपको बात बतानी है आपने कभी नहीं सुनी होगी,
ये बात आपने कभी सुनी नहीं होगी, आपको हंसी आएगी इस बात पर, हालांकि रोना चाहिए हमें। ईस्ट एंड में कुछ हाई स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल्स हैं जिसमें शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, उसकी वजह से गेस व्हाट उन्होंने लास्ट जो सेमेस्टर गया है उसमें, क्योंकि उनके पास शॉर्टेज है, तो उन्होंने जितने उस क्लास के लड़के और लड़कियां हैं उन सबको 100% दे दिया
विदाउट चेकिंग मार्क्स।
चेकिंग मार्क्स के लिए है ही नहीं कोई, एग्जाम लेने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई इट्स अनफेयर टू द किड्स, सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, तो इसलिए हम इनको उसमें 35% सेकेंडरी स्कूल जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमारे पास स्टाफिंग एंड टीचर्स की कमी है। 24% ऑफ एलिमेंट्री स्कूल ने कहा है हमारे पास कमी है। तो दो बायोलॉजी,
जिस जिस बच्चे को सबक नहीं आता ना बता दें ये इलाका कौन सा, उधर चल के मूव कर जाए।
अरोरा का इलाका है,
अरोरा तो इतना पे इतना महंगा इलाका है
अरोरा। यस अरोरा एंड न्यू मार्केट के स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल, में स्कूल का नाम भी बता दूं मैं आपको, एक स्कूल का नाम बता सकता हूं, सेंट मैक्सिमिलियन कोलबे कैथलिक हाई स्कूल इन अरोरा। उन्होंने कहा जी आप परवाह ना करें, हम आपको वो करते हैं।
अच्छा लो जी मैं अब आपको बताती हूँ, ये जो ड्रग्स होती है ना, नशे वाली चीजें, और मुझे एक गाना है आज न ऊपर आसमान नीचे, सुना मैंने आपने गाना। अब ये वॉशिंगटन में आपको बताइए, न्यूयॉर्क में चूहे इतने ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा हो गए हैं, और मतलब आप देखिए गजा में कितने बंदे मर रहे हैं, अफ्रीका में कितने बंदे मर गए हैं फेमेंस की वजह से, असला ये मुल्क बेचते जा रहे हैं, दे आर नॉट केयरिंग व्हाट द एनवायरमेंट, व्हाट इज हैपनिंग टू द एनवायरमेंट। अभी मैं रिसेंटली एनवायरनमेंट के लिहाज से कल रात को ही मैं ये न्यूज देख रही थी कि वेदर अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि वो एक रीच है, रीच बेयर जिसको कहते हैं ना, वो बेचारा इनका स्लीपिंग पीरियड होता है सर्दियों में, अपनी सो जाते हैं, वो बेचारा उठ गया, अब उसकी खुराक वहां पे मौजूद नहीं है, अल्टीमेट ही एंडेड अप इन टू द सिटी, हाइबरनेशन पीरियड जो है ना उनका जल्दी खत्म हो गया। न्यूयॉर्क की मैं बात कर रही हूँ, अब न्यूयॉर्क में बंदे मरे या जिए व्हाट्सएवर, बट चूहे इतने चूहे हो गए, इतने चूहे हो गए, इतने चूहे हो गए, इतने चूहे हो गए हैं, और चूहों की वजह से एक बीमारी भी आम हो गई है, 6 के करीब केसेस,
वेरी डेंजरस बीमारी, इज वेरी डेंजरस।
या उसमें यह है कि उनके जो यूरिन के ट्रेसेस जहां जहां मिलते हैं फूड में, बल्कि FCC की फेडरल जो कम्युनिकेशन है उसके लिहाज से आपको पता होगा कि बहुत सारे, आप गूगल करके देख लें, मैं नहीं कह रही आप गूगल कर लीजिएगा, मैंने इस खबर को एज सच कवर नहीं किया था, कि हमारे मुल्कों से जो आए हुए स्पाइसेस हैं ज्यादातर उनमें उन्होंने चूहों के यूरिन के ट्रेसेस देखे हैं या उनकी फीसिस के ट्रेसेस देखे हैं चूहों के, और हमें दिखने में मुश्किल बात ही नहीं लगी क्योंकि हम तो पले ही चूहों के साथ थे, मतलब कहा जाता है ना उन मुल्कों में चूहे बहुत ज्यादा हैं, तो मगर दिस इज वेरी डेंजरस। प्लेग किसकी वजह से फैला था? चूहों की वजह से फैला था, और ये जो बीमारी है सेक्लेरोसिस जो है इसमें भी वही चूहे के पेशाब से ये, उसके ट्रेसेस से ये फैलती है। अब न्यूयॉर्क में उन्होंने क्या किया है कि चूहे की जब आबादी इतनी बड़ी है, एक चूहा जो है वो 15 एक जोड़ा, एक चूहा नहीं एक जोड़ा, मतलब दे आर सो लविंग टूवर्ड्स ईच अदर कि वो एक साल में 15,000 बच्चे पैदा करते हैं। हाँ ना, मुझे भी झूठ लगा था पहले, मुझे भी ये झूठ लगा था, बस यस एक जो पेयर है चूहों का वो 1500 बच्चे पैदा करता है, 1500
होगा
हाँ आपको भी लगे, चार पांच पांच बच्चे देते हैं, और मेरा ख्याल है इनका पीरियड भी कम ही है, बहरहाल 1500, मैंने भी इसको 1500 पढ़ा था मगर बाद में जब मैंने देखा तो ये 15,000 था, बहरहाल मैंने फर्स्ट
इसको
कवर किया था 1500 पे कवर किया था। एनीवेज तो वो अब वो कह रहे हैं कि उनको वो पिल्स दी जा रही हैं जो कि उनको ये कंसीव करने से रोकेंगी, लो कर लो बात, टैक्स पेयर पे अल्टीमेटली बोझ आएगा ना भाई, चूहे का फायदा तो है कोई नहीं या तो आप बिल्लियां छोड़ दें या फिर आप जो उनको मतलब अब वो उनको वो वाली पिल्स देनी है ताकि उनकी बर्थ रेट को कंट्रोल चूहों का किया जाए।
आप कह रही हैं इनका कोई फायदा नहीं है आप
नहीं इकोसिस्टम नहीं नहीं इकोसिस्टम मैं बताती हूँ इकोसिस्टम में हर जानदार का फायदा है फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम हर जानदार का इट्स अ फूड चेन मगर अगर फूड चेन में इम्बेलेंस आ जाए ठीक है एक स्पीशी इतनी बढ़ जाए इसका मतलब है उससे ऊपर उस फूड चेन की जो ऊपर की कड़ी का जानवर है उसमें कमी हो
मेरा कहने का मकसद ये था कि एक दुनिया में एक ऐसी भी कौम है जो इनको अपना खुदा मानती है और इनके इनको मार नहीं सकते वहां पर
चलो मैं इस चक्कर में नहीं जाती एनीवेज अभी एक और नई बात आपको चूहों से मुतल्लिक बताती हूँ अब जो चूहे हैं उनको भी आदत डाली जा सकती है ये वाशिंगटन में ना पुलिस के मुताबिक अब चूहों ने क्या करना शुरू किया पुलिस स्टेशन में रेड कर दिया पुलिस स्टेशन में जब रेड किया तो वहां पकड़ी हुई ड्रग्स भी थी अब चूहों को जब कुछ खाने को न मिला तो उन्होंने वो ड्रग खानी शुरू कर दी उसके बाद से वो गाना गाते थे आज मैं ऊपर आसमान नीचे वो कहते हैं कि ऐसे वाक्य का सामना करा पड़ा जिसकी नजीर नहीं मिलती जनूबी रियासत लुजियाना लुजियाना के शहर में पुलिस ने वो कहते हैं इंकशाफ किया है कि उनके हेडक्वार्टर में चूहे भांग खा रहे हैं और कहा कि तमाम जानवरों में मंशियात के इस्तेमाल की इलामत जाहिर हुई हैं उन्होंने सिटी काउंसिल के इजलास के दौरान ये रिमार्क्स दिए थे और चूहों और कॉकरोचों ने तवील अरसे से महकमा पुलिस के हेडक्वार्टर्स को मुतासर किया लो आखिर कोई पुलिस वालों के पेट में भी गुदगुदी कर सकता है ये जो पुलिस ऑफिस था स्टेशन था 1968 में तामीर किया गया था और बहरहाल वो कहते हैं वो जो चूहे भैया आपने अपनी ड्रग्स को ताले में रखना था और लॉकर में रखना था ताकि लॉकर से अंदर ना जा सके
छोटी सी चीज है मगर मेजॉरिटी मैं एंड आई एम वेरी कंफर्मिंग दिस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्केर्ड ऑफ चूहा
हाय एक और बात आपको बताऊं
आदमी हो औरत हो
नो बट स्केर्ड हो न हो आपको बताए ये जो खासतौर पे पाकिस्तान में इन दिनों में जिन लोगों को सजाएं हुई हैं एक सजा क्या है
चूहों में डाल दिया
नहीं एक सजा ये है जैसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाना इट्स वेरी स्ट्रेंज एक आई नेवर थॉट कि पाकिस्तान में यानी अपने पाकिस्तानियों को भी ऐसी सजाएं दी जाती होंगी आई डोंट नो सुनी सुनाई बात है सारा लोगों ने बताया मगर एक सजा जिसका मुझे पर्सनली पता चला वो क्या करते हैं जैसे हम शलवारें पहनते हैं ना तो वो क्या करते हैं शलवार के अंदर चूहे छोड़ देते हैं और नीचे से उसका पैंचा बंद कर देते हैं
रबर बैंड लगा दिया
या टाई कर दिया ना अब चूहा हाय मैं मर जाऊं कितनी खौफनाक है ना आपको नहीं डर लगा
बहुत घिन ज्यादा आई डर कम
घिन नहीं डहादो अल्लाह करे आपकी पेंट में चूहा चला जाए फिर मैं आपसे पूछूं चलिए साहब एक गाने की तरफ आपको लेके चलती हूँ
गाने से पहले हम पहले टॉप ऑफ द आवर ना निपटा लें
नहीं मैं गाने के साथ पहले गाना आपको एक सुनाऊंगी बहुत अच्छा सा गाना सुनाऊंगी पंजाबी का गाना है सुन वंजली दी मिठड़ी तान आमिर कौन सा वाला गाना आमिर ने एक और गाना मुझे गाना बता दीजिएगा
जवान ये शाहरुख का एक गीत है
यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार कर
का सॉन्ग है ये हिंदी सॉन्ग है जवान
फिल्म बेचा माइक के पास आके बात करते होते हैं
जवान फिल्म से ये गीत है सुन
इश्क में दिल बना है इश्क में दिल बना है ओ मिला रे या बना रे मैंने तुझको चुना है छोड़ दे ओ
कहती इश्क़